Okay, guys, my name is Fizan and I am a technology enthusiast.
और मेरा नाम शहवार अहमद है और मैं एक लेजर साइंटिस्ट हूँ.
और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेक लॉग पॉडकास्ट नंबर 21.
इक्कीसवां हफ्ता
और थोड़ी सी बीच में जो है हमारी निजी मसरूफियात की बिना पे हम आपसे जो है वो ताल्लुक कायम नहीं रख सके, लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. क्यों भाई शेरी, सही बात है ना?
बिल्कुल यार, कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है. और शेरी बातें तो हो रही है काफी, तुम सुन रहे होगे आजकल.
जब से हमने पॉडकास्ट पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया, लोग मार्स पे पहुंच गए यार.
यार मैं भी बोल रहा हूँ कि पूरी उन्होंने रोवर उतार दी और उसका मैंने जब वीडियो देखा तो एक थोड़ा प्राउड भी फील हुआ कि यार एक इंजीनियरिंग कम्युनिटी, एक रिसर्च कम्युनिटी, दोनों की जो कोलैबोरेशन है किस तरीके से. और एक तुम देखो ना कि मतलब लोग पहले सोचते थे कि चंदा मामू की कहानियाँ सुनते थे, सही. फिर चांद पे पहुंचे, फिर लोगों ने उसको बोला कि भाई ये तो असला खराब,
अब और आगे जाना है.
तो नहीं लोग वो फिर वो बन गए ना, दो तबके बन गए थे अपनी तरफ. तो एक तो वो तबका बन गया कि भाई चांद पे तो जा ही नहीं सकते, झूठा है, झूठ है, सही है. फिर दूसरा वो बन गए कि जिन्होंने चांद पे अजान सुनी, सही है, वो वाला भी तबका है, सही है. नील आर्मस्ट्रांग भाई ने, सही. तो अब फिर इसी कश्मकश में हम लोग बढ़े हुए, सही. हम लोग उसी, और उसके बाद अब हम देखते हैं अपनी आंखों से कि भाई दो, पहले वैसे तो तीसरी है, पहली रोवर जो थी वो तो पंचर हो गई थी. सो जो दूसरी हमारे पास थी क्यूरियोसिटी, और अब जो गई है परसिवियरेंस. क्या बोलते हो शेरी?
यार अभी जैसे तुमने पॉइंट रेस किया ना ये वाला कि दो तबके बन गए और ये बन गए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हमेशा ही एग्जिस्ट करती हैं. मतलब जिस फील्ड में चले जाओ वहाँ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे वाले पाकिस्तान वाले ही जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे लगे रहते हैं. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मजे की बात यह है, जब से हमने ये पॉडकास्ट शुरू की तो मैं मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पे अपना पॉडकास्ट सर्च कर रहा था कि यार चलो ट्राई करते हैं कि और किस किस टॉपिक पे पॉडकास्ट लोग करते हैं जस्ट फॉर नॉलेज. भाई पूरी पूरी पॉडकास्ट हैं जो बेस्ड ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे कर दी है. मतलब उधर लोग बात ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे करते हैं, तो वहां पे भी अभी जो है ना रिसेंटली यही बात हो रही थी मार्स को. मतलब स्पॉटिफाई पे वो पॉडकास्ट हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा, खैर, लेकिन वहां पूरी पूरी बात ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे होती है. लेकिन वो फैक्ट तो हमेशा ही रहता है. लेकिन जहां तक दूसरी बात है ना कि मार्स पे जाना या चांद पे जाना, तो एक अजीब सा पॉइंट रेज होता है कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. मतलब क्या हम दुनिया में खुश नहीं है?
अपना माइक थोड़ा नीचे करो कि मैं जो है ना वीडियो ना चल जाए. चलो सही, हाँ शरी कंटिन्यू करो.
नहीं 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 नहीं, तो मतलब बात यही है, आज का हमारा टॉपिक भी है कि आर वी रेडी फॉर मार्स. तो इसमें टॉपिक के अंदर हम लोग ज्यादातर यही कोशिश करेंगे कि हम ये सोचने की कि या तो मतलब साइंटिफिकली क्या मकसद है इस पे और ये सब करने का फायदा क्या है, और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कि लोग रोवर मार्स पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा.
अच्छा शेरी पता है क्या, वो तो हम अपने लोगों को बोलते हैं, वो तो एक क्योंकि हम उस तबके से निकल कर आए, सही. हम पाकिस्तान से, हमने पाकिस्तान का वो बॉक्स देखा है. तुम अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग बॉक्स कंसिडर कर लो या अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को, तो हम उस स्कूल ऑफ थॉट से आए हैं. हमें उसके वेरिएबल्स पता है, हमेशा मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ, सही. हमें उसके वेरिएबल्स पता है, लेकिन लोग सारे जो है ना वो एक ही जैसे हैं, सही. चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो US हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो जो लोकल आवाम है ना, उनके जो कंसर्न्स होते हैं ना इस मामले में ख़ास तौर पर कि स्पेस में गए या नहीं गए, तो तकरीबन सेम ही है. और जितने भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, ये भी तो बाहर के लोगों से ही सुन के जो है पाकिस्तान में जो है लोगों को पता चला ना. पाकिस्तान में तो अभी इंटेलेक्चुअल लेवल है काफ़ी लोग, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि वो मास जो है ना मूवमेंट चला सकें, मास माइंड चेंज कर सकें. اسپیشلی اسپیس کے معاملے میں, اسلامی نظریے پہ تو کر سکتے ہیں صحیح, لیکن اسپیس کے معاملے میں ابھی ہم لوگ اتنے آگے نہیں ہیں صحیح, وہ سب کو پتا ہے. تو وہ کانسپریسی تھیوریز بھی باہر سے ہی آئی ہیں جو تم بات کر رہے ہو.
نہیں, اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. سائیکولوجیکل فیکٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچنا نہیں چھوڑے گا کبھی. Exactly. صحیح ہے. تو جب انسان کی سوچ کسی بھی مسئلے میں کہیں بھی ایکسٹریملی ایک ایکسٹریم حد تک جا سکتی ہے, تو وہ بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی خیال سوچتا ہی رہتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کے جو یہ خیالات ہیں, یہ جو تھاٹس ہیں, پھر وہ اس کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈاٹ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب وہ ڈاٹ کو کنیکٹ کرتا ہے وہاں سے کانسپریسی تھیوریز جنم لیتی ہیں, کیونکہ اس کی سوچ یا اس کی جو لاجیکل تھنکنگ کا لیول ہے وہ اس چیز تک یا اس چیز اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے. جہاں اس کی یہ والی پوزیشن آتی ہے کہ جہاں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کی لاجیکل تھنکنگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, وہاں سے پھر کانسپریسی تھیوریز جنم لینا سٹارٹ کرتی ہیں. کیونکہ پھر وہ وہاں سے یہ سوچتا ہے اچھا اگر ایسا نہیں ہوا ہوگا تو ایسا کرنے سے سامنے والے کو فائدہ کیا ہوگا. تو وہاں سے پھر ایول تھاٹس پرووکس ہوتی ہیں کہ مطلب ایسا کرنے سے جو ہے نا یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے,
یہودی سازش.
ہاں, تو وہ پھر اس طرح کی جو یہ جو فینومنا ہے نا, یہ انسان سے ریلیٹڈ ہے, یہ کسی ایک مطلب سوسائٹی یا ایک کنٹری یا ایک کلچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ تھاٹ پرووکنگ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہیں. اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یار دیکھو, سب سے پہلے لوگ چاند پہ گئے, تو اس وقت میجورٹی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار چاند پہ جانے سے فائدہ کیا ہوگا. کانسپریسی تھیوریز جو آنا شروع ہوئی ہے نا, وہ اس کا جو متن تھا, مطلب جو مین کہہ لو سورس تھی, وہ یہ تھی کہ یار کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے ابھی تک. تو
ارے شری, میں تمہیں تھوڑا تھوڑا سا یہاں پر بولوں گا کہ وہ بچپن میں کہانیاں سناتی تھی امی کے, بھائی چاند پہ گڑیا رہتی ہے, گڑیا رہتی ہے, کون رہتی ہے,
گڑیا رہتی ہے,
اس سے ملنے. تو ایک شروع سے کیوریوسٹی ڈال دی دماغ میں, یار چاند پہ کچھ تو ہے, جا کے دیکھو کیا کچھ تو ہو رہا ہے وہاں پر.
نہیں تو ہمارے ہم لوگ جو ہے وہ چاند کو اس طرح لیتے تھے کہ محبوب اپنے عاشق سے کہتا تھا میں تیرے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا, اور ایک بندہ وہ واقعی چاند پہ پہنچ گیا چاند لینے کے لیے.
اچھا شری, ایک اور مزے کی بات, لوگ بولتے چاند میرا جو محبوب ہے وہ چاند کی طرح دکھتا ہے, کوئی مارس کی طرح کیوں نہیں بولتا؟ یہ بھی تو صحیح آ رہا ہے یار, کیا ہو گیا.
تو پھر چاند پہ جانے سے دیکھو ہوا کیا, سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک نئی ڈومین ہے وارفیئر کی, وہ اوپن ہو گئی. دوسرا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو انسان کو ہم ایز اے نارمل اگر ڈومیسٹک لائف میں دیکھیں تو ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سوچ سکتے. سیٹلائٹس امپروو ہونا شروع ہوئیں. سیٹلائٹ امپروو ہونے سے عام انسان کو کیا فائدہ ہوا؟ عام انسان کو یہ فائدہ ہوا کہ آج ہم 4G اور 5G کی باتیں کرتے ہیں. یار وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یار ایک سیٹلائٹ بھیجیں گے اور ایک پورا نیٹورک بچھا دیں گے, جیسے اسٹار لنک کی مثال دے لو.
بالکل.
ایسے کانسیپٹس جو تھے, جو ایک کہانیاں تھیں, وہ ریئلٹی کے اندر سامنے آنا شروع ہوئی, سائنس امپروو ہونا شروع ہوئی. اب جو دوسری جو سب سے بڑی فیلڈ چاند کی وجہ سے آئی, جس کی وجہ سے لوگوں نے مارس کا سوچا, وہ یہ تھی کہ یہ جو ایسٹرائڈز ہیں, تو بہت سارے ایسے ایسٹرائڈز ہیں جو ارتھ کے جیو آربٹ اور لیو آربٹس میں گھوم رہے ہیں. جیو آربٹس اور لیو آربٹس کا مطلب میں یہاں پہ کلیئر کرتا ہوں سب کو, کہ لو ارتھ آربٹ جو ہے, جو ارتھ سے کتنے قریب ہے وہ آربٹ. سو ایک آربٹل سسٹم بنایا ہوا ہے. جب ہم یہاں سے اسپیس شٹلز یا کوئی بھی اڑن تشتری جاتی ہے باہر, یو ایف اوز کائنڈ آف تھنگ سمجھ لو, جب یہاں سے ہم کوئی سیٹلائٹ بھیجتے ہیں تو وہ کس آربٹ میں ریوالو کرے گی, تو وہ آربٹس کا ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ٹائمنگ کا اور ارتھ کی ٹائمنگ کا کنیکشن بیچ میں رکھنا پڑتا ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب فائدہ کیا ہوگا ان ساری چیزوں سے؟ اب فائدہ یہ ہوا کہ ایسی بہت ساری ریسرچ تھی جس کا انسان نے سوچا بھی نہیں تھا, ایسے بہت سارے پروڈکٹس تھے جس کا انسان نے سوچا بھی نہیں تھا, وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. جیسے یہ سریلیکس وغیرہ ہے نا, بچپن میں کھائے ہوں گے ہم نے, یا اسپیس ایکسپلوریشن کی وجہ سے ایجاد ہوا.
Exactly.
کہ ہائی نیوٹریشن فوڈ, کم ویٹ کے اندر, کم کوانٹیٹی کے اندر, اس طرح کی چیزیں بنی. پھر جو ڈائپرز ہیں, بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے, یہ جو ڈائپرز ہیں یہ بھی ایک تھوڑا سا اسپیس ایکسپلوریشن کی وجہ سے آئے. اب بالکل ایسٹرائڈ پہ جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو हर थोड़ी बात अगर कोई भी स्पेस न्यूज़ को फॉलो करता है तो ये देखता है कि यार ये रोवर जो है एस्ट्रॉइड पे पहुंच गया, मैं मार्स की बात नहीं कर रहा, एस्ट्रॉइड पे पहुंच गया, मतलब एक वो जो उसको उर्दू में क्या कहते हैं यार ये जो उड़े होते हैं,
क्या बोलते हैं, शाब साकिब बोलते हैं,
हाँ ये जो शाब साकिब गिर जाता है ना जिसको देख के लोग दुआएं मांगते हैं
उसके भाई उसके अंदर आपको पता है कितने मिनरल्स होते हैं। बल्कि एक थ्योरी तो ये भी है कि जो मतलब ऑफ कोर्स मुसलमानों की नहीं है, उसमें ये है कि कुछ एस्ट्रॉइड्स जमीन से आके लगे थे और उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया थे जो ऑर्गेनिज्म थे, वो फिर इवॉल्व होके फिर जो है ह्यूमन एवोल्यूशन हुई। हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन एक थ्योरी ये भी है
यार, वो पूरा एक बिग बैंग और का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक अलग जगह चली जाएगी बात। एस्ट्रॉइड में फायदा क्या मिल रहा है यार, बहुत सारे एस्ट्रॉइड ऐसे फाइंड आउट हुए हैं ऑर्बिट्स में जो अर्थ के करीब हैं, अगर उनके ऊपर माइनिंग कर ली जाए, गोल्ड माइनिंग कर ली जाए, तो इतना गोल्ड होगा कि पूरी दुनिया के लिए काफी होगा। अभी इस वक्त की पॉपुलेशन जितनी है दुनिया में, उस पूरी पॉपुलेशन के लिए उतना गोल्ड काफी होगा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी धातें हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बहुत यूजफुल हो सकते हैं। या मैं एक अजीब सी थ्योरी दे रहा हूँ, थ्योरी नहीं एक फैक्ट है, इजिप्ट के अंदर एक ममी दरियाफ्त हुई थी, उस ममी के साथ एक चाकू था, एक नाइफ थी, उस नाइफ के ऊपर एक स्पेशल किस्म का क्रिस्टल लगा हुआ था और एक मिनरल का बना हुआ था। तो जब उस पर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रिसर्च हुई, इसकी स्टडी हुई, तो पता लगा कि वो जो मिनरल था वो कोई एलियन एक मिनरल है, वो दुनिया में नहीं पाया जाता।
बिल्कुल
उन लोगों को उस वक्त ये समझ थी कि ये मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इंसानी एवोल्यूशन के लिए।
अच्छा शेरी, फिर वो तो फिर बात एक और जगह पे वही बोल रहे हैं, आगे पीछे निकल जाएगी, इधर उधर नहीं निकलना। तो मैं ये बोल रहा था कि जिस तरीके से तुमने अभी बात की डायपर्स की, जिस तरीके से तुमने बात की सीरियल, एक सही है, एक जो हाई न्यूट्रिएंट्स के साथ एक फूड जो आपका बनता है। एक और चीज़ है, आप घर पे बैठे हुए होते हैं, आप अपना मोबाइल निकालते हैं, आपको भूख लगी, आपने खाना सेलेक्ट किया, सही है भाई, ऑर्डर किया, बंदा आपके घर पे देने आया आपकी पिन पॉइंट लोकेशन पे, क्या यूज़ कर रहा है वो?
सैटेलाइट
GPS, GPS, तीन सैटेलाइट यूज कर रहा है, ट्रायंगुलेशन कर रहा है। ये GPS जो है, जो पोजीशनिंग सिस्टम है, ये भी आपकी स्पेस एक्सप्लोरेशन का ही जो है वो नतीजा है। आपकी जो LCDs जिस पे हम लोग ये बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को, जो ये मोबाइल्स की LCDs, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये कहना थोड़ा सा जो है वो गलत होता है कि हम जमीन को क्यों नहीं ठीक कर रहे, हम आसमानों की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम दूसरे, देखो एक क्यूरियोसिटी है और उस क्यूरियोसिटी के अमल के अंदर हम लोग कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो हमें जमीन पे काम आती है, जैसे सोलर पैनल हो गए फॉर एग्जांपल, सही।
सोलर पैनल का जो कॉन्सेप्ट है, जाहिर है वो आइंस्टाइन भैया ने दे दिया था एक जमाने में, उस वक्त मतलब वो कीड़ा तो रख दिया था ना, एक बुनियाद तो रख दी थी ना कि ये सोलर पैनल भी एक चीज हो सकती है, ऑप्टिकली एक चीज एब्जॉर्ब होगी और उसको आप एनर्जी को यूज कर सकते हो। लेकिन जो सोलर पैनल का मेन एवोल्यूशन हुआ है वो तब हुआ कि जब चांद पे रोवर भेज रहे थे।
Exactly.
अब वो सोच रहे थे कि इसकी बैटरी को चार्ज कैसे रखें, तो प्रॉब्लम आ गई। अब एक प्रॉब्लम का जन्म जो लिया गया है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से लिया गया। उसके बाद उन्होंने वो लूनर फेस के तौर पे उन्होंने देखा कि वहां पे लाइट कितनी आती है सूरज की, उसको अगर एब्जॉर्ब कर लें तो वहां से भी एनर्जी क्रिएट की जा सकती है।
एग्जैक्टली यही बात है। और उसके बाद फिर पूरे पूरे मुल्कों ने फॉर्म बना लिए उसके, पूरे पूरे बड़े बड़े, और अब फिनलैंड जैसा कंट्री जो है वो पूरा ग्रीन एनर्जी पे चल रहा है, विंड एनर्जी और सोलर पैनल।
हाँ, तो इस तरह की चीजें जो है ये हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन से जो है ना इवॉल्व होना शुरू होती हैं। तो ये तो अच्छा, हमने बात करी ना फायदों की, तो यहाँ से बात करते हैं थोड़ी सी इस तरफ के मार्स पे जाने से क्या फायदा मिलेगा, और जाना जरूरी भी है या नहीं है, या इस वक्त के सिनेरियो में जहां हर जगह अफरा तफरी मची हुई है कोविड की वजह से
कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है, ऐसा लग रहा है खबरें पढ़ रहा हूं मैं उर्दू की
वहां हम ये बात कर रहे हैं कि मार्स पे जाने से क्या फायदा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब मजे के लिए बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी दिखे, खैर अच्छी बात है, सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए इस तरह की चीजों में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ सोसाइटी के सामने कूल बनने के लिए जो है मार्स के रोवर की और मार्स की लाइफ वीडियो की तस्वीरें लगा रहे थे।
शिट मैन, मैंने भी लगाई थी भाई, ऐसे नहीं बोल
अच्छा
नहीं, लेकिन अच्छा मेरे
सॉरी मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर तो उसको कंटिन्यू करना कि वहां की सैंड की तस्वीरें लगा रहे थे, देखो मार्स की सैंड ऐसी दिखती है। अब उनको साइंटिफिक रीजन पता ही नहीं था कि लोग इतना सैंड के अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं।
अच्छा शरीफ, मैंने पता है क्या, मुझे एक अजीब सी ना एक प्राउड सा फील हुआ ना जब मैंने वो देखा कि जब वो एक और एक थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ, एक प्राउड भी हुआ, एक रिग्रेट भी हुआ। एक प्राउड ये हुआ कि यार देखो टेक्नोलॉजी कितनी इवॉल्व हो चुकी है कि हम अपनी उन बाउंड्रीज से निकल के कहाँ तक पहुँच गए। एक रिग्रेट ये हुआ कि यार मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया इसमें, सही है, या मेरी सोसाइटी ने क्या कंट्रीब्यूट किया। उसी इसी इसी के ऊपर चलेंगे अभी पॉडकास्ट को लेके आखिरी पार्ट में कि हम क्या कर रहे हैं, सही। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे एकदम एक फीलिंग आई एज अ इंजीनियर कि यार मेरा कोई बना हुआ मॉड्यूल इसमें होता, सही, या कोई मेरी बनी हुई कोई चीज़ होती जो कंट्रीब्यूट करती है इसके अंदर, इसकी डेवलपमेंट के अंदर। तो एक अभी मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सही, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यार पाकिस्तान से कोई चीज़ क्यों नहीं गई, सही, पाकिस्तान से भी जानी चाहिए। तो एक मेरे दिल में वो भी आया कि यार तुम्हें एक ना मिले जुले से जो है ना मेरा असरा, तो मैंने उसको शेयर कर दिया, मैंने बोला यार ज़बरदस्त काम हुआ जो भी हुआ और हमें भी करना चाहिए, सही। तो ये चीज़ थी मेरे जहन में।
अप्रिशिएट तो करना चाहिए यार, देखो कोई भी एवोल्यूशन होता है, मुझे पता है साइंटिस्ट को ये सारे काम करने के पैसे मिलते हैं
यार, पैसों की तो बात
सही है, नहीं मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, लोग ये बात करते हैं कि यार इनको तो ये काम करने के पैसे मिलते हैं ना। इसी तरह मैं अगर एग्जांपल दूं, फुटबॉलर को फुटबॉल खेलने के भी तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसको उसकी फैन फॉलोइंग भी तो कितनी मिल रही है। तो रिकग्निशन जो है ना, हर इंसान का एक बुनियादी नीड है, उसको रिकग्निशन चाहिए होती है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो पैसे तो उसको मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसको रिकग्निशन मिलेगी इस वजह से कि उसने कितनी बड़ी सोच लगा के एक बड़ा काम किया, तो उसकी मोटिवेशन का लेवल और होगा, उसके बाद वो और अच्छा काम कर सकेगा।
Exactly.
तो रिकग्निशन तो जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट तो वैलिड है, वो जस्ट अ जोक था कि हाँ लोग शेयर कर रहे थे। लेकिन तुमने टेक्नोलॉजी की बात किया, मैं तुमसे यहाँ एक क्वेश्चन करूंगा। तो ये जो मार्स पे इन्होंने रोवर भेजा है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है?
मतलब सबसे पहले तो रोवर चलेगी कैसे, सबसे पहला सवाल तो अच्छा, ये है ना आपका लिमिटेड एनर्जी आपके पास।
स्टार्ट से करते हैं ना, यहाँ से मैंने रोवर भेज दिया,
सही है,
उसके मसले मसाइल, उसकी टेक्नोलॉजी।
अच्छा, देखो यहाँ से आपने जहाज में चढ़ा तो दिया, उतारोगे कैसे?
नहीं मैं उससे भी पहले का स्टेप, जहाज जा कैसे रहा भाई?
अच्छा जहाज जा कैसे रहा, जहाज तो हमने देखो सबसे पहले कुछ क्रेजी किस्म के लोग हैं हमारे पास, सही है, जैसे कि एलन मस्क एक उनमें से एक है, जिन लोगों ने, सही है, रॉकेट टेक्नोलॉजी को जो है वो कितना इवॉल्व कर लिया है कि वो उसके थ्रस्टर्स भी जो है वो वापस लेकर आ रहे हैं, सही है। तो सबसे पहले तो आपने, अगर मैं डेवलपमेंट में नहीं जाऊँ उसकी, सही है, उसकी सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं जाऊँ, उसके सिर्फ मैं लॉन्चिंग के अंदर चले जाऊँ, तो लॉन्चिंग के अंदर कितने सारे जो है उसके अंदर फैक्टर्स हैं, सही है, क्या उसका पुश होना चाहिए, कितना उसका क्या बोलते हैं हमारे पास, कितनी पावर से वो लिफ्ट करेगा, और उसके अंदर जो है वो आपने रोवर को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फिक्स करना है। उसके बाद अब देखो सिर्फ यही नहीं कि आपने रॉकेट बना लिया, उसके अलावा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स पे आप हर रोजाना मुंह उठा के नहीं जा सकते, वॉशरूम नहीं जा रहे आप कभी उठ के चले गए, सही। मार्स का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, वो 2 साल में एक मरतबा आता है जमीन के करीब, तो वो आपकी जो है ना एक विंडो होती है 1 या 2 दिन की, अगर मुझे नंबर सही तरीके से नहीं पता, लेकिन बहुत स्पेसिफिक विंडो होती है जिसके अंदर आप जो है वो मार्स के अंदर अपना रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, सही। अगर मिस हो गया तो फिर बैठे रहो 2 साल तक, सही। तो वो ये सीन है, तो वो लॉन्च हुआ, सही, गया उसने तकरीबन अच्छा खासा, अब मुझे स्पेसिफिकली नंबर्स नहीं है, लेकिन जितना भी 7 महीने का उसने सफ़र किया और वहाँ पर पहुँचा। अब पहुँचने के बाद, सही है, जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो उसकी कितनी क्या बोलते हैं वेलोसिटी होती है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसका एक पूरा मैकेनिज्म था, एक पूरा लैंडिंग सीक्वेंस था, अगर किसी ने देखा होगा, तुमने देखा हो।
मैं इधर इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक की स्टोरी जो तुमने एक्सप्लेन की है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि टेक्नोलॉजी क्या क्या इन्वॉल्व थी और रिसर्च किस तरह से इन्वॉल्व थी और इंजीनियरिंग किस तरह से इन्वॉल्व थी। सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि रॉकेट टेक्नोलॉजी की तुमने बात की, कितना आसान से कह देते हैं लोग कि रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स, उसके अंदर फिर रोवर को फिट करना, और रोवर को भी ऐसे फिट करना कि जो सेफली वहां तक पहुंच जाए, जो उसके इम्पैक्ट्स हैं और जो जितनी स्पीड से वो जा रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट होगी, सब कुछ क्रिएट होगा, उसकी वजह से उस रोवर की इलेक्ट्रॉनिक्स पे और उस रोवर इटसेल्फ, उस रोवर पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेंगे।
Exactly.
उसकी शील्डिंग डिजाइन करना, अब शील्डिंग के अंदर 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज और रिसर्च आ जाती है, एक तो मटीरियल स्पेसिफिक लोग आ जाते हैं जो उसके मटेरियल की स्पेसिफिक के मटेरियल कौन सा होना चाहिए, किस तरह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, तो ये मटेरियल रिसर्च है उससे कनेक्टेड। दूसरी रिसर्च जो कनेक्टेड है स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो है छोटे से छोटा कैसे बनाना, मिनीचराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स वाले आ गए, नैनो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स वाले आ गए, आईसी डिजाइनिंग वाले आ गए। इन्होंने किस तरह इस इंटीग्रेशन को डिजाइन किया, इसको छोटा किया। तो ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट की वजह से, लेकिन इससे दुनिया को फायदा क्या हुआ? स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी चीजों में जब इन्वेस्टमेंट होती है वहां आपके पास एरर का मार्जिन कम होता है, लेकिन स्पेंडिंग का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। आप ये कहते हो कि मैं अच्छी चीज बना लूं बजाय इसके कि मैं सस्ती चीज बनाऊं। यहां से चीजें इवॉल्व होना शुरू करती हैं और इवॉल्व होती हैं, उसके बाद फिर मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्हीं सारी चीजों से इवॉल्व करना शुरू करते हैं, जैसे वो सिरिलैक की मिसाल हमने दी थी। तो ये तो चलो बात थी कि वहां तक पहुंचा, अब वह लैंड कैसे किया, आगे की स्टोरी पे बात करते हैं।
अच्छा, अब लैंडिंग का सीक्वेंस मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले तो जो, अच्छा मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमें आगे भी जो है ना मेन टॉपिक पे जाना है। तो डिटैच हुआ, डिटैच होने के बाद जो है उसका क्या बोलते हैं पैराशूट खुला, और पैराशूट खुलने के बाद जो है वो उसको जमीन पे रखते हैं, बाकायदा पूरी उसकी वीडियो मौजूद है। सही, अब क्या होगा? सही, अब तो वो पहुंच गया, अब उसने क्या करना है? वो जो सॉइल की तुम बात कर रहे हो, सही,
अभी एक मिनट, एक पॉइंट मिस हो गया। मतलब मेरी भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है ना, मैं भी क्यूरियोसिटी रोवर वाला बंदा।
क्यूरियोसिटी नहीं, परसेवेरेंस।
नहीं, वो तो नया वाला है ना, वो जो मरा था बेचारा वो तो क्यूरियोसिटी था ना। तो देखो, अर्थ पे कोई चीज है ना, हम यहाँ है, हम यहाँ की चीजों को मेजर कर सकते हैं, हम यहाँ ऊपर आसमान पे जाके चीजें फेंक के भी टेस्ट कर सकते हैं कि जब पैराशूट इतनी विंड के साथ इस एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ नीचे आएगा तो पैराशूट के अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या जो चीज मेरी लैंड कर रही है उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तुम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हो जहां तुम गए ही नहीं हो, और तुम्हें अंदाजा है कि उस दिन वहां पे क्या टेम्परेचर होगा, क्या वेलोसिटी होगी। तुम्हें ग्रेविटी का भी थोड़ा बहुत इल्म है, ग्रेविटी बहुत जरूरी है। इवन आपको एक पॉइंट मेंशन कर दूं, लोग समझते हैं कि मून पे ग्रेविटी नहीं है, मून पे भी ग्रेविटी वर्क करती है भाई, लेकिन बहुत कम है। तो वहां पे जो आपको उछलते हुए नजर आ रहे होते हैं ना, ये इसी वजह से उछलते हुए नजर आ रहे होते हैं कि वो आराम से क्रॉल कर, मतलब या क्या कह सकते हैं उसको, वो चल सके चांद के ऊपर, लेकिन वो इतना ना उछले कि वो चांद की ग्रेविटी की रेंज से आउट हो जाए कि वो स्पेस पे ही घूम रहे हो।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये तुमने बात की है तो डेंसिटी अलग है एयर की, जो वहां पर क्या बोलते हैं,
वहां की एयर कंडीशन बहुत अलग है,
बिल्कुल अलग है। तो अब उस हिसाब से रखना पूरी कैलकुलेशंस, वो पूरी कैलकुलेशंस ही है ना, क्या है बाकी
कैलकुलेशन भी
है, सब कैलकुलेशन है, मॉडल ट्रेन हुए हैं सारे,
मतलब एआई, टोटल एआई,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा, उसको पॉइंट डिटेक्ट किया, वहां पर उतरी है, सही है, अब चलाना है उसे। चलने में भी उसने 7 दिन लिए हैं, सिर्फ एक जगह पे रही है वो पहले, सही है। और अच्छा, सेंसर्स जो मैंने देखे ना उसके अंदर, मार्स रोवर के अंदर जो मेजर सेंसर, वो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड, सही, सारे के सारे, मतलब मैं टोटल बता रहा हूँ। क्या करना है, सॉइल एनालिसिस करना, मॉइस्चर एनालिसिस करना, एलिमेंट डिटेक्शन करनी, तमाम की तमाम चीजें स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो रही।
फराज भाई यहाँ मौजूद है, फराज भाई को लेजर मेट्रोलॉजी याद आ गई होगी, हमने जो पढ़ी थी कि उसके अंदर एक बड़ा अमेजिंग सी चीज ये थी कि जब ये लोग मून पे गए तो इनकी फोर साइटेडनेस चेक करो आप, कि जब ये मून पे गए उस वक्त इनको इतना बिलीफ था कि आने वाले 40 सालों में या 50 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर जाएगी कि वो जो सैंपल्स हैं उनको अगर हम अभी तिजोरी में बंद करके रख लें कि वो डिफॉर्म ना हो सकें, या किसी भी किस्म का अर्थ का जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उन सैंपल्स में ऐड ना हो सके, उन्होंने उसको सेफ बॉक्स में रखा, और उसको उन्होंने फिर ये 1900s में, मतलब 1990 के बाद खोला था कुछ सैंपल्स को, और कुछ सैंपल्स को अभी रिसेंटली 2010 के बाद खोलना शुरू किया है। उसके ऊपर भी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा के वो ये सर्च कर रहे हैं कि इसके अंदर जो हमने पहले डिटेक्ट किए थे मिनरल्स, क्या वो हमने सही डिटेक्ट किए थे, या जो एलिमेंट डिटेक्शन की तुमने बात की तो वो सही डिटेक्ट की थी। अब मार्स पे करने से क्या होगा?
अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करता हूँ, बल्कि ये जवाब भी मिल जाएगा तुम्हें। मार्स देखो, साइन ऑफ लाइफ, सही है कि यहाँ पर लाइफ कभी एग्जिस्ट किया करती थी उन लोगों ने, जहाँ पर वो, उस जगह का भी नाम मैं भूल रहा हूँ, सही है, काफी सारे नाम मैं भूल चुका हूँ, कि वो जिस जगह पर लैंड किया है, जो बेस उन्होंने बनाया है, उस जगह पर कभी एक दरिया होता था, ऐसा टेरेन उसका ऐसा, सही है। तो अब वो क्या करेगा रोवर, वो देखेगा उस जगह पर कि क्या किसी कोई डीएनए मिलता है सही किसी किसी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पुराना डीके हो चुका है, तो उसके अलग इस तरह के सिरिंजेस है, जैसे ये हमारा मार्कर है ना, इस तरह के सिरिंजेस है, वो क्या करता है समझ लो टेस्ट ट्यूब है ये, वो अंदर ड्रिल करता है, उसको कलेक्ट करता है और अपने पास सेव कर लेता है। समझ कुछ कुछ एनालिसिस वो यहाँ पर करेगा सही है कि टेस्ट क्या बोलते हैं, हमने जो सॉयल निकाली है स्पेक्ट्रोस्कोपी करके कि ये हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं है सही, और फिर उसका जो यूजफुल सैंपल होगा उसको अपने पास कलेक्ट करता रहेगा और वो सैंपल अब अर्थ वापस आएंगे, ये भी आप चेक कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक पूरी साइंस है। अच्छा अब ये तो सही है, अब इन सब चीज़ को चलाने के लिए ड्रिल करने के लिए सबके लिए पावर चाहिए होगी सही,
बिल्कुल
पावर चाहिए होगी, सोलर पैनल, लेकिन सोलर पैनल कब तक चलेंगे?
सोलर पैनल का सबसे बड़ा मसला मार्स पे, जो देखो हम तो अर्थ पे है ना, हमारा एक डिस्टेंस है स्पेसिफिक सूरज से, और उस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हमें एक क्वांटिटी ऑफ लाइट मिलती है। तुमने जर्मनी की बहुत सारी एग्जांपल सुनी होंगी कि जर्मनी में सोलर पैनल्स इतने एफिशिएंट नहीं है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन रहती है, तो जो सूरज की रोशनी सोलर पैनल तक पहुंचती है उसमें इतनी एफिशिएंटली एनर्जी नहीं होती कि वो हमें एक एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करके दे सकें। मार्स की बात करो तो मार्स तो वैसे ही बहुत दूर है सही है कंपैरेटिवली अर्थ के, तो अब वहां पे अगर पैनल लगाएं, अच्छा पैनल लगाए हैं बिल्कुल वहां पे, लेकिन वो जो पैनल्स लगाए हैं उधर तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही और वो पैनल्स अभी किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने पैनल्स लगाए क्यों है, क्या तुम इसको गैस कर सकते हो?
नहीं बताओ।
ये एक बहुत अरसे से कहानी चल रही है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक लेजर्स, फराज भाई भी सुन रहे हैं हमें, और फराज भाई के साथ मैंने इस पे एक छोटा सा रिव्यू पेपर लिखा था फॉर सम अदर कोर्स। इनका आइडिया यह है कि एटमॉस्फेरिक लेजर्स को इतना पावरफुल बनाएंगे कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स भेजेंगे, उसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होंगे और स्पेशल काइंड ऑफ एम्पलीफायर समझ लो जो लाइट को कैच करेंगे, जो लेजर लाइट इन्होंने अर्थ से भेजी होगी, और उसके बाद उस जो मार्स रोवर अभी इन्होंने भेजा है विद डजन्स ऑफ पैनल्स, अच्छा वो सोलर पैनल्स नहीं है, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैनल्स हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक एनर्जी को या वेवलेंथ को या लाइट को एब्जॉर्ब करें और मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट क्रिएट कर सकें वहां पे, तो वो अर्थ से बैठ के लेजर मारेंगे सैटेलाइट पे, और वो सैटेलाइट का जो कॉन्स्टेलेशन है वो ब्रिजिंग करता हुआ वो उस रोवर तक पहुंचाएगा और उस रोवर की बैटरी को चार्ज करेगा जब जरूरत होगी।
नाइस नाइस, ये जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, ये समझ में आ गई मेरे बात, होपफुली सुनने वालों को भी समझ में आ गई होगी। अच्छा अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, एक जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अब एनर्जी देखो किस तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स वाले भी आ गए सही मार्केट में, देखो मतलब तुम देख रहे हो कितने इंजीनियर्स मटेरियल साइंटिस्ट फिजिसिस्ट सही है न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कितने लोगों की एफर्ट है इस चीज़ के पीछे, एक एक चीज़ जो हम देख रहे हैं। तो बताने का मकसद ये कि वो जो वहाँ पर उन्होंने क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल, उसका नाम भी मैं भूल गया सही है, तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं आजकल काफ़ी जो है वो तीन चार चीज़ों में फंसा हुआ हूँ तो मैं नाम बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कहने का मकसद ये कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो है वो कन्वर्ट करके एनर्जी बना रहे, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके कितने सालों में होता है तुम जानते हो सही है, तो वो समझ लो कि एक अनलिमिटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी चल रही है उनके पास।
अभी एक नई सोर्स आई है एनर्जी की ना, खास करके स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए, उसमें ज़ीनॉन यूज़ होता है और दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, उसके अंदर भी ये होता है कि लेज़र असिस्टेड कम्बशन कहलाती है, वो बहुत फार अवे कॉन्सेप्ट है कि या तो आप लेज़र उस रोवर में बिल्ड कर देते जो कि बहुत मुश्किल है। अब वो क्या कर रहे हैं कि पहला स्टेप तो ये है कि वो सोलर पैनल पे शाइन करें, दूसरा स्टेप ये होगा उनके लिए कि वो या तो उसी रोवर में ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो जाए या आइंदा आने वाले रोवर्स में, कि वो यहाँ से या तो वो एक बेस बनाए मून पे, और वो मून पे जो बेस है वो फॉर सम टाइम जब तक वो मार्स के उस रोवर के सामने होता है, तो वहां से वो उसको इतनी एनर्जी पंप करे लेजर की कि वो उस कंबशन इंजन पे शाइन करें और वहां पे कंबशन जनरेट हो लेजर असिस्टेड और उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो और वो उसकी बैटरी को चार्ज करें, तो ये भी हो रहा है।
बिल्कुल सही, अच्छा चलो ये तो सारी बातें हो गई सही, इवन इन्होंने इस दफ़ा जो है वो क्या बोलते हैं क्वाडकॉप्टर तो नहीं बोल सकता, हेलीकॉप्टर टाइप कुछ चीज़ें भेजी, तो पहला जो है ना वो एरियल व्हीकल मार्स पे गया इस दफ़ा, एक छोटा उस रोवर के साथ, तो वो जो है वो क्या बोलते हैं उसकी 8 घंटे की बैटरी लाइफ है और वो उड़ता है और तस्वीरें वस्वीरें ले सकता है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये भी एक एक्सप्लोरेशन, अब ये एवियोनिक्स आ गए, क्योंकि जिस तरीके से फराज भाई ने बताया, अब जितना जितना जो ड्रैग है, जितना ड्रैग ज़मीन पर चाहिए, उससे पता नहीं कितने थाउजेंड्स गुना ज़्यादा जो है ना आपको ड्रैग वो मार्स के ऊपर हवर करने के लिए चाहिए, समझेगा? तो कितनी पावरफुल मोटर्स आ गई, सही। तो कहने का मकसद ये है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी सारी फील्ड्स जो हैं वो एक साथ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही। अब मेरा जो हमारे पॉडकास्ट का जो मेन मकसद है उसको हम शुरू जल्दी से जो है ना वो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सही, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उससे क्या मतलब मार्स को जहन में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, देख रहे हो?
इसमें दो रुख हैं। एक रुख तो ये है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहला रुख तो ये है। दूसरा जो समझने वाली बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी मार्स पे यूज हुई है, ये जितनी हमने छोटी छोटी जो हम समझ सकते थे या जल्दी जल्दी डिस्कस कर सकते थे थोड़ी बहुत, इन टेक्नोलॉजीज को देखना, इन पे लिखे हुए पेपर्स और पेटेंट्स को पढ़ना, और इन टेक्नोलॉजी को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो दो रुख हैं, एक यह है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरा कंट्रीब्यूशन करने का तरीका यह है कि उन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके उनसे प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं।
एग्जैक्टली ये भी मैं बिल्कुल अभी यही बात करने वाला था कि अब हमें नहीं ये देखना है कि ये टेक्नोलॉजीज तो आ गई हैं जो रोवर के अंदर लगी हुई है, जो एक्सप्लोरेशन के अंदर हो गई हैं, हमें उन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है और उन टेक्नोलॉजीज को एडवांसमेंट की तरफ किस तरीके से लेके जाना है। और लोग मार्स पे गए, देखो आइडिया किसी ने, कोई क्रेजी था ना जिसने सोचा कि हाँ यार मार्स पे जाना चाहिए, सही, हम लोग क्यों नहीं सोच सकते इस तरह, सही, हम ये भी बोल सकते हैं नेपच्यून पे जाएंगे भाई। देखो सोचोगे तो करोगे, सही, तो सोच ही लिमिटेड होगी, वही बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट, जब जितनी जैसा गुमान करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, सही, बड़ा सोचो, सही, नेपच्यून पे जाएंगे, उधर के एटमोसफियर जो है वो अपने क्या बोलते हैं मीथेन गैस की बनी हुई है, सही है, और उधर हीरो की बारिश होती है, पहुंचो। सही।
अच्छा एक चीज ये है कि
यही अभी तक पता चला,
एक चीज तो एक चीज ये है कि चलो ये तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्पेस है, लेकिन हम जो एक चीज मिस कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में कि हमारे जो ऊपर की स्पेस है, स्पेस मतलब हमारे छत के ऊपर की स्पेस की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे ऊपर जो स्पेस है मतलब जो खला है वो भर चुका है अभी से सैटेलाइट से। अब अगर हम अपनी सैटेलाइट भेजते हैं ना तो हमें पहले जिसने सैटेलाइट वहां पहले से भेजी हुई है उससे इजाजत लेनी पड़ेगी, और ये मॉडर्न सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है हमारे मुल्क के लिए कि हमारे सर के ऊपर एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बैठा हुआ है। तो हमें अगर टेक्नोलॉजी में भी इवॉल्व करना है ना तो हमें सैटेलाइट की तरफ देखना पड़ेगा। काफी लोग इस फील्ड को पढ़ते हैं पाकिस्तान में लेकिन बेचारे उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। दूसरा काम जो कर सकते हैं जो इंटरेस्टिंग काम है, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस होती हैं मॉडल्स की, जो सिमुलेशन पाकिस्तान के लेवल पे इंडिविजुअली की जा सकती हैं, उन न्यूमेरिकल सिमुलेशंस को किया जाए और उनको पब्लिश किया जाए। यार इस चीज के पीछे इतना काम है न्यूमेरिकल सिमुलेशंस का, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का दिमाग है लोगों का जुगाड़ू, वो जुगाड़ सारी न्यूमेरिकल सिमुलेशंस में भी यूज हो सकती हैं। हर दूसरे बंदे को कंप्यूटर साइंटिस्ट कोडिंग एआई का शौक है पाकिस्तान में इस वक्त, वो इन सारे टूल्स को यूज करते हुए न्यूमेरिकल सिमुलेशंस कर सकता है, मॉडलिंग कर सकता है और अपने मॉडल्स पब्लिश कर सकता है, और पब्लिश करने से उसको नुकसान नहीं होगा, उसको फायदा ही होगा। अगर उसको पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो उसको बाहर की कोई ना कोई बड़ी रिसर्च फर्म उठा लेगी।
अच्छा शेरी, सही, बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बात की, तो अपॉर्चुनिटी तो है, सही है, और हमने जैसे उसमें बोला कि हम रेडी हैं या नहीं है, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो अभी रेडी नहीं है, रेडी होना पड़ेगा, सही, लेकिन जो दुनिया है वो रेडी हो रही है इस चीज़ के लिए कि हमें स्पेस में निकलना है। आज मार्स पे गए हैं, सही, कल को कॉलोनाइज करेंगे उसे, सही, पूरा एलन मस्क ने पता नहीं कितना लंबा प्लान दिया है उसने कि हाँ भाई पहले 6 लोग जाएंगे, फिर 75 लोग जाएंगे, फिर 1000 लोग जाएंगे, इस तरीके से पूरा एक प्लान। इवन जेफ बेजोस ने amazon.mars के नाम से अपनी एक डोमेन भी रजिस्टर करवा लिए amazon पे सप्लाई। भाई
यार एक पॉइंट है ना इसके पीछे, जब अमेरिका चांद पे गया तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने अपने लोगों का माइंड नहीं बनाया होगा? इतना लॉस हुआ है ना पैसों का फर्स्ट 2 और 3 tries के अंदर, इंसानों का भी लॉस हुआ है, शटल्स का भी लॉस हुआ है, फंड्स का भी लॉस हुआ है, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन वो क्यों सस्टेन रहे, और ये चीज मैं पाकिस्तान में होता हुआ देख रहा हूँ जो कि अच्छा है लेकिन बड़े लेवल पे नहीं, वो ये है कि स्पेस को लेके क्यूरियोसिटी जनरेट होना बच्चों में, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो बिल नाई है, बिल नाई बहुत मशहूर पॉडकास्टर है साइंस का, साइंस रूल्स के नाम से, और वो 1970s से पॉडकास्ट कर रहा है। अगर आप उसकी पॉडकास्ट सुनेंगे तो उसकी पॉडकास्ट में एक मुनफरिद पॉइंट ये होता है कि उसको बचपन से, मतलब उसने जो पढ़ाई की होगी वो 1930s और 40s या 50s में की थी, 50s में की थी सॉरी, हाँ जो स्कूलिंग है वो 50s की है उसकी। तो 50s में चांद पे जाने से पहले ही उन लोगों के इतनी क्यूरियोसिटी स्कूल लेवल पे ही बिल्डअप करना शुरू कर दी थी, देखो मून ये होता है, देखो मार्स ये होता है, सोलर सिस्टम ये होता है। हम सोलर सिस्टम बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस की बुकों में एक चैप्टर की हद तक, उस पर कोई ट्यूटोरियल्स, मतलब ट्यूटोरियल कह लो, वर्कशॉप्स नहीं कराते बच्चों की, फन लर्निंग बेस्ड वर्कशॉप्स। और ये मैं देख रहा हूँ बच्चे खुद ही कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब की वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के ये सारी चीजें कर रहे हैं।
सही, मतलब बिल्कुल, ये हमसे, हमें इसके लिए जो है, जैसे फराज भाई ने बताया कि जो क्या बोलते हैं, दो इंडियन बेस्ड साइंटिस्ट जो हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब देखिए ना, इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए हम लोगों को।
ये कमेंट पढ़ दो, मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर रहेगा।
ये एक सर शो कर देता हूँ उसको, काफी अच्छी बात की। देखो, रोवर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंडियन बेस्ड साइंटिस्ट हु इज इन हिज टू रूम अपार्टमेंट इन लंदन, होम ऑफिस एट स्पीक। मतलब वो तो एक बात हो गई, सही है, लेकिन ये कि अब देखो शेरी, फॉर एग्जांपल हम पोटेंशियल बहुत है, सही है, जैसे तुमने बताया कि अब ग्रूमिंग का मसला है, एक्सपोजर का मसला है, वो एक्सपोजर देना है लोगों को, उसके लिए हम भी यहाँ पर बैठे हुए टेक लॉक के जरिए दे रहे हैं एक्सपोजर लोगों को। लेकिन हम लोग तो वी कैन डू सो मच, मतलब हम लोग कितना नहीं कर सकते जो एक गवर्नमेंटल लेवल की पर चीज़ हो सकती है, सही है। अच्छा, मेरा जो पर्सनल है ओपिनियन है ना, अब जो एग्जिस्टिंग चीज़ है ना वहाँ से पिकअप करो, सही है, जो अब अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं, सही। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने स्पेस की बात की, एक हमारी छत के ऊपर की छत की बात की, तो स्पेस डिब्रीज का जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम है। कोई ऐसा स्टार्टअप निकालो, सही, अभी अभी आइडिया आया मेरे बेटे बेटे नाजिल हुआ ये एक कोई ऐसा स्टार्टअप हो जो स्पेस की सफाई करे, क्योंकि रॉकेट्स जाते थे वो ऐसे इधर उधर निकल जाते थे, सैटेलाइट जो है वो क्रैश होती थी, अभी भी वो जो है वो स्पेस में ही घूम रही। तो पाकिस्तान अगर मार्स पे नहीं जा सकता, पाकिस्तान अगर मून पे नहीं जा सकता, कोई ऐसा स्टार्टअप तो हो सकता है कि स्पेस में जाके डिब्रीज को जो है वो हटाए।
ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया तुमने।
तो एक एक ये तो मैंने ये तो देखो मैंने अपनी लिमिटेड नॉलेज से एक चीज बताया, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मौजूद है स्पेस के अंदर आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की। अब जैसे कि हमने बताया कि क्या बोलते हैं, स्पेस पे एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर ही चले गए, दूसरी दुनिया गए होगे, वो टेक्नोलॉजी जो आप डेवलप करोगे वो ज़मीन पे भी किसी ना किसी तरह काम आएगी, समझेगा। तो ये है मेरा पॉइंट, एक कोई कुछ ऐसे स्टार्टअप में निकलते हुए देखना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुद भी एक ऐसा स्टार्टअप करना चाहता हूँ जिसमें मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर।
इसका एक सिंपल सा एक हाल है, जैसे मैंने सिमुलेशंस की बात की, हम इतना फंड तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी की एक्सट्रीम टेस्टिंग कर सकें, या उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती क्योंकि 100 किस्म के प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं उन पे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप न्यूमेरिकल मॉडलिंग से स्टार्ट ले सकते हो, आप अपने न्यूमेरिकल मॉडल बना रहे हो, आप सिमुलेशन मॉडल्स बना रहे हो, और वो सिमुलेशन मॉडल्स कंपनीज खरीदती हैं, क्योंकि देखो जो स्पेस में रिसर्च कर रहा है ना, जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कर रहा है, वो एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में एक्सपर्ट है, इस पर उसकी डोमेन एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स है, उसकी डोमेन ये नहीं है कि वो न्यूमेरिकल मॉडलिंग कर रहा है कि जो उसके जहन में ख्याल आया है उसको पता है फोर्सेस कितनी एक्ट हो रही है, ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इन फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए कि वो कंप्यूटराइज तौर पे भी उसको मॉडल को इम्प्लीमेंट करके टेस्ट कर सकता है। वो बेचारा बैठा हुआ पेपर पे सॉल्व कर रहा है, या जो मैथ कैट सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर इक्वेशंस लगा लगा के कर रहा है, लेकिन अगर वो विजुअलाइजेशन बेस्ड मॉडल्स आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है।
एग्जैक्टली तो शेरी, मेरे ख्याल से इसी बात पे जो है ना हम लोग कोशिश करते हैं कि होपफुली लोगों को कुछ समझ में आया होगा।
तो मैं तुमसे सवाल करूं, आर वी रेडी फॉर मार्स?
यार मेरा तो जो है ना, मतलब अगर तुम पर्सनली पूछो तो ये है कि अभी तो हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं है, सही सही, टाइम लगेगा लेकिन हमें उसके लिए थ्राइव करना पड़ेगा, सही। जैसा फॉर एग्जाम्पल अब मेरे दिल में जो है ना एक नया गोल सामने आया, सही, पिछले कुछ अरसे के अंदर कि यार मुझे कोई ना कोई चीज़ भेजनी है मार्स पे, सही। अब मेरे अंदर ये आया तो कोई किसी और के अंदर भी आया होगा, लाइक माइंडेड लोगों को मिलाओ, सही, अभी नहीं, दो साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद, कभी ना कभी अगर आप एक कॉन्स्टेंटली एक चीज को परसू करते हो ना, तो वो फिर आपको इवेंचुअली मिल ही जाती है, कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिल जाती है। तो हम रॉकेट नहीं भेज सके तो एटलीस्ट स्पेस की डिब्रीज हटा देंगे, सही है, कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे। और फिर उससे जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी उससे हम ह्यूमैनिटी को जो है वो फायदा पहुंचाएंगे, जिस तरीके से तुमने बताया पैंपर वाली एग्जांपल, सही है, सोचो जो पेरेंट्स हैं उनको कितना फायदा होता है इससे
यार।
जस्ट एग्जांपल दी मैंने,
मेरा तो मैं भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे यही होंगे कि तुमने एक पॉइंट मेंशन किया था कि यार कभी कभार जो है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक अच्छा फील होता है कि हम जिन टेक्नोलॉजीज से खेलते हैं वो टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं।
एग्जैक्टली,
तो ये काफी अच्छा फील होता है मुझे कि मैंने लेजर की फील्ड को चूज किया जहां पे लोग कहते थे कि लेजर की फील्ड ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड सारे मेजोरिटी लेजर बेस्ड है, वहां पे लाइट बेस्ड है, ऑप्टिक्स बेस्ड है, और लेजर यूज हो रही है एक्सटेंसिवली, और लेजर की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है मार्स की वजह से भी और एटमोस्फेरिक साइंसेस की वजह से भी। तो ये ऐसा अच्छा फील होता है कि यार मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ, मैं ऐसे सैंपल्स को देख रहा हूँ जो कि एक बाहर की दुनिया से लेकर आए हुए हैं, या मैं ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ जो मैं जिस टेक्नोलॉजी को बना रहा हूँ, या मेरा आइडिया जिस टेक्नोलॉजी में लग रहा है उससे रिसर्च को फायदा हो रहा है, और वो रिसर्च जो है वो स्पेस साइंसेस के लिए यूज होगी। तो ये काफी मतलब एक बूस्टर होता है, एक मतलब मोटिवेशन बूस्टर होता है।
पता है क्यों शेरी, पता है क्यों? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग, ये हमारा पैशन है जो हम कर रहे हैं, तुम भी जो कर रहे हो ये तुम्हारा पैशन है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कर रहा हूँ, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, वो मेरा पैशन है, सही। तो जब हम देखते हैं ना कि यार ये चीजें इतनी आगे निकल रही है, तो एक दिल से खुशी होती है भाई, दिल से
अपने बच्चे वाली खुशी होती है, देखो मेरा बच्चा कितना आगे पहुंच गया।
जब मैं मार्स रोवर को देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने क्यों नहीं बनाई है, ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही थी।
चलो खैर,
चलो मतलब खत्म करते हैं,
हम काफी हद तक रेडी हैं और काफी हद तक रेडी नहीं है, तो बस यही इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हाँ। मार्स को लेके
स्पेस को लेके जो भी होगा आपके लिए हम लेकर आएंगे टेक लॉग पॉडकास्ट के अंदर, थोड़ा सा मैं खबरें पढ़ लूं तो भाई कोशिश थी हमारी कि कुछ लोगों को पता चले, कुछ अवेयरनेस हो, फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल मैसेज है वो यही है कि हमें थ्राइव करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये हमारे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही शरी। तो इसको यहीं पर ही पॉडकास्ट को कंक्लूड करेंगे, थैंक यू सो मच, दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।